एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी सोच ने, आप कह सकती हैं, लगभग 2500 साल पहले पश्चिमी दर्शन की नींव रखी और उनके विचारों की गूंज आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं प्लेटो की।
बिल्कुल, प्लेटो एक ऐसा नाम जिसने दर्शन, राजनीति, ज्ञान, अरे भाई हम यथार्थ को कैसे समझते हैं, इन सब पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और हाँ, उनका असली नाम तो एरिस्टोक्लीस था, प्लेटो तो शायद मतलब एक निकनेम जैसा था।
तो आज का हमारा मकसद क्या है? प्लेटो के जीवन की कुछ झलकियां देखना, उनके सबसे प्रभावशाली विचार, खास तौर पर वो जो थोड़ा रहस्यमयी लगता है, फॉर्म्स का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स।
हाँ, और ये जानना कि भाई 2400 साल बाद भी वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं, उनकी बातें आज भी प्रासंगिक क्यों हैं।
बिल्कुल, तो इसके लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, है ना, उस समय के एथेंस में।
हाँ बिल्कुल, लगभग 428 ईसा पूर्व जब प्लेटो का जन्म हुआ। देखिए, वो समय एथेंस के लिए बड़ा उथल पुथल वाला था, पेरिक्लीस का जो स्वर्ण युग था वो खत्म हो रहा था।
और वो पेलोपोनेशियन युद्ध भी तो था।
हाँ, वही विनाशकारी पेलोपोनेशियन वॉर, एथेंस उसमें हार गया था, तो राजनीतिक और आप कह सकते हैं नैतिक रूप से शहर बिल्कुल हिल गया था, संकट का दौर था।
तो माहौल मतलब काफी निराशाजनक रहा होगा, युद्ध हार गए, लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे थे।
हाँ, और इसी माहौल में ना वो सोफिस्ट लोग उभर रहे थे, ये ऐसे विचारक थे या कहिए शिक्षक थे जो तर्क करना सिखाते थे, लेकिन उनका मानना था कि कोई परम सत्य जैसा कुछ नहीं होता, सब रिलेटिव है।
अच्छा, मतलब बहस जीतना ज्यादा जरूरी था, सच क्या है ये नहीं।
बिल्कुल, उनका जोर जीतने पर था। दूसरी तरफ थे सुकरात, प्लेटो के गुरु, वो कहते थे नहीं, परम सत्य है और हमें उसे खोजना चाहिए।
सुकरात, वो नैतिकता, सदाचार, सत्य, इन पर बहुत जोर देते थे, सवाल पूछते थे लोगों से।
हाँ, उनकी मान्यताओं को चुनौती देते थे ताकि लोग खुद सोचें, खुद सत्य तक पहुंचें। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, 399 ईसा पूर्व में एथेंस के लोकतंत्र ने ही सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया।
ये तो प्लेटो के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जिस गुरु ने उन्हें सोचना सिखाया, उसी व्यवस्था ने, उसी लोकतंत्र ने उन्हें मौत दे दी।
निश्चित रूप से, मतलब ये घटना प्लेटो के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। उनका जो सपना था राजनीति में जाने का, वो एक तरह से टूट गया।
उन्हें लगने लगा होगा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसने सुकरात जैसे ज्ञानी को मार डाला।
बिल्कुल, कि ये शासन का सही तरीका नहीं हो सकता। और यहीं से उनका झुकाव पूरी तरह दर्शन की ओर हो गया। वो एक ऐसी व्यवस्था की खोज में लग गए जो न्यायपूर्ण हो, जो सत्य पर आधारित हो।
और उनका परिवार तो एथेंस का जाना माना संपन्न परिवार था, तो शिक्षा वगैरह तो अच्छी मिली ही होगी।
हाँ हाँ बिल्कुल, एरिस्टोकल्स जैसा मैंने कहा उनका असली नाम था, प्लेटो का मतलब होता है चौड़ा। अब ये नाम क्यों पड़ा पता नहीं, शायद उनके चौड़े कंधे थे या माथा चौड़ा था,
या शायद उनकी सोच का दायरा बहुत चौड़ा था।
हाँ, ये भी हो सकता है। तो उनको उस दौर के कुलीनों वाली शिक्षा मिली थी, गणित, संगीत, व्यायाम। और हाँ, एक दिलचस्प बात, कहते हैं युवावस्था में वो काफी कुशल पहलवान भी थे।
पहलवान, दार्शनिक बनने से पहले एथलीट, वाह।
और इतना ही नहीं, कवि और नाटककार भी थे। पर कहते हैं कि जब वो सुकरात से मिले तो इतने प्रभावित हुए कि अपनी सारी कविताएं जला दी।
सच में?
हाँ, और खुद को पूरी तरह दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। सुकरात की मृत्यु के बाद तो वो एथेंस छोड़कर कई साल तक यात्रा पर रहे, मिस्र गए, इटली, सिसली।
इन यात्राओं का भी असर पड़ा होगा उनकी सोच पर।
बिल्कुल, खासकर इटली में, वहां वो पाइथागोरस के अनुयायियों से मिले। पाइथागोरस, वो गणित को ब्रह्मांड की कुंजी मानते थे। उनका मानना था कि संख्याओं में, ज्यामिति में एक शाश्वत अमूर्त सच्चाई छुपी है।
अच्छा,
इस विचार ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया, शायद यहीं से उनके वो फॉर्म्स के सिद्धांत के बीच पड़े।
अच्छा, तो मतलब जैसे गणित में स्थायी नियम होते हैं, वैसे ही दुनिया में भी कुछ स्थायी अमूर्त सच्चाइयां हैं, ये विचार आया होगा।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए जब वो एथेंस लौटे लगभग 387 ईसा पूर्व में, तो उन्होंने अकेडमी की स्थापना की।
अकेडमी, जिसे पश्चिम का पहला विश्वविद्यालय भी कहते हैं।
हाँ, कह सकते हैं। और ये कोई मामूली स्कूल नहीं था, ये तो 900 सालों से ज्यादा चला, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र बना रहा।
और वो कहानी भी तो है कि अकेडमी के गेट पर लिखा था, जिसे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री ना आती हो वो अंदर ना आए।
हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके लिए तर्क और गणित कितने महत्वपूर्ण थे। तर्क संगत चिंतन ही ज्ञान का असली रास्ता था उनके लिए।
लेकिन उनका राजनीति से मोह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था शायद। वो सिसिली वाले शासक को दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश,
हाँ, डियोनीशियस, तीन बार कोशिश की उन्होंने कि एक ऐसा शासक बने जो ज्ञान और विवेक से राज करे।
पर वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई है ना। सुना है एक बार तो उन्हें पकड़कर लगभग गुलाम की तरह बेच ही दिया गया था।
हाँ, ये दिखाता है कि उनके आदर्श कितने ऊंचे थे और दुनिया की सच्चाई कितनी कठोर थी। शायद इन अनुभवों ने उनके बाद के लेखन को और ज्यादा परिपक्व बनाया होगा।
चलिए अब उनके सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे ज्यादा चर्चित विचार पर आते हैं, फॉर्म्स का सिद्धांत। ये अक्सर लोगों को थोड़ा उलझा देता है, इससे आसान शब्दों में कैसे समझें?
देखिए, कोशिश करते हैं। प्लेटो कह रहे थे कि ये जो दुनिया हमें अपनी इंद्रियों से महसूस होती है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, ये असली दुनिया नहीं है।
असली नहीं है तो क्या है?
ये तो बस एक परछाई है, एक नकल है।
परछाई? किसकी परछाई?
असली दुनिया की। वो असली दुनिया है फॉर्म्स या आइडियाज की। ये एक अलग लोक है, अमूर्त है, अनदेखा है, जहां हर चीज का एक आदर्श रूप, एक परफेक्ट फॉर्म मौजूद है जो शाश्वत है, कभी नहीं बदलता।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए सुंदरता। दुनिया में हमें बहुत सी सुंदर चीजें दिखती हैं, कोई फूल, कोई तस्वीर, कोई इंसान। प्लेटो के अनुसार ये सब चीजें इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो सुंदरता के फॉर्म में हिस्सा लेती हैं। वो उस परम आदर्श सुंदरता की एक झलक हैं, एक अपूर्ण नकल हैं।
अच्छा, तो असली परफेक्ट सुंदरता कहीं और है, फॉर्म्स के लोक में?
हाँ, वैसे ही न्याय का एक परम फॉर्म है, अच्छाई का एक परम फॉर्म है, यहां तक कि कुर्सी का भी एक परम आदर्श फॉर्म है। दुनिया में जो भी न्यायपूर्ण कार्य या जो भी कुर्सियां हमें दिखती हैं, वो उस असली परफेक्ट फॉर्म की अधूरी नकल या छाया मात्र हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों से मिलता है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, प्लेटो यही कह रहे थे। सच्चा ज्ञान, जिसे वो एपिस्टेमे कहते थे, वो इंद्रियों के अनुभव से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो हमें सिर्फ बदलती हुई अधूरी परछाइयां दिखाती हैं।
तो फिर सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा?
केवल तर्क और बुद्धि के इस्तेमाल से, उन शाश्वत फॉर्म्स को समझकर। जो हम देखकर या सुनकर जानते हैं वो महज राय या मत है, जिसे वो डॉक्सा कहते थे। ये ज्ञान नहीं है। यहीं पर वो ज्ञान मीमांसा, एपिस्टीमोलॉजी की बात करते हैं कि हम कैसे जानते हैं जो हम जानते हैं।
और इसी से जुड़ा है उनका तत्व मीमांसा का विचार, मतलब यथार्थ की प्रकृति क्या है। तो उनके हिसाब से यथार्थ के दो स्तर हो गए, एक ये हमारी भौतिक दुनिया और दूसरी वो फॉर्म्स की अनदेखी दुनिया।
एकदम सही, ये द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म, उनके दर्शन का केंद्र है। एक नाशवान बदलती हुई दुनिया और एक शाश्वत न बदलने वाली आदर्श दुनिया।
ये विचार उन्होंने अपनी किस किताब में सबसे अच्छे से समझाया है? शायद द रिपब्लिक में।
हाँ, द रिपब्लिक लगभग 380 ईसा पूर्व उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। ये न्याय की खोज से शुरू होती है लेकिन फिर एक आदर्श राज्य की पूरी रूपरेखा बन जाती है, और इसी में उनका वो मशहूर गुफा का रूपक, एलेगरी ऑफ द केव, आता है।
हाँ, गुफा वाला रूपक। वो कहानी बहुत दिलचस्प है। कुछ कैदी हैं जो जन्म से एक गुफा में जंजीरों से बंधे हैं, दीवार की तरफ मुंह करके।
हाँ, और उनके पीछे एक आग जल रही है। आग और कैदियों के बीच एक रास्ता है जहां से लोग तरह तरह की चीजें लेकर गुजरते हैं। उन चीजों की परछाइयां सामने दीवार पर पड़ती हैं।
और कैदी बचपन से वही परछाइयां देख रहे हैं तो वो उन्हीं को असली दुनिया समझते हैं।
बिल्कुल। अब प्लेटो कहते हैं कि हम सब, ज्यादातर लोग, उन कैदियों की तरह ही हैं। हम इस भौतिक दुनिया की छायाओं को ही सच मान बैठे हैं। दार्शनिक कौन है? दार्शनिक वो है जो किसी तरह उन जंजीरों को तोड़ता है, गुफा से बाहर निकलता है।
और बाहर निकल के क्या देखता है?
सूरज की रोशनी, यानी असली दुनिया, फॉर्म्स का लोक, सत्य का ज्ञान। और फिर उसका काम क्या है? वापस गुफा में जाना।
वापस क्यों?
दूसरों को सच्चाई बताने के लिए, उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए, भले ही वो कैदी उसकी बात ना माने, उसे पागल समझें या शायद उसे मार ही डालें, जैसा सुकरात के साथ हुआ।
ये तो ज्ञान और अज्ञान, भ्रम और यथार्थ की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। और इसी रिपब्लिक में वो दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग की बात करते हैं ना?
हाँ, क्योंकि प्लेटो के अनुसार शासन करने के योग्य कौन है? केवल वही व्यक्ति जिसने गुफा से बाहर निकलकर सत्य यानी फॉर्म्स का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी दार्शनिक,
क्योंकि वही समझ सकता है कि न्याय का असली फॉर्म क्या है, अच्छाई का असली फॉर्म क्या है।
बिल्कुल, इसलिए आदर्श राज्य में शासन दार्शनिकों के हाथ में होना चाहिए, वही न्यायपूर्ण शासन कर सकते हैं।
लेकिन ये विचार क्या थोड़ा अलोकतांत्रिक और कुछ लोग कहेंगे खतरनाक नहीं लगता? मतलब सिर्फ कुछ गिने चुने ज्ञानी ही शासन करें, आम लोगों की कोई भूमिका नहीं? इसी आधार पर तो उनकी काफी आलोचना भी होती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, यहीं पर प्लेटो की आलोचना शुरू होती है। देखिए, द रिपब्लिक में वो जिस आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं वो आज के नजरिए से बहुत कठोर लगता है। कला और कविता पर सेंसरशिप है।
हाँ, और शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार भी नहीं है।
सही, और समाज को तीन कठोर वर्गों में बांटा गया, दार्शनिक शासक, सैनिक और उत्पादक। 20वीं सदी के एक बड़े विचारक थे कार्ल पॉपर, उन्होंने प्लेटो के इस आदर्श राज्य को एक बंद समाज, क्लोज्ड सोसाइटी का खाका बताया। यहां तक कहा कि ये अधिनायकवाद, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटालिटेरियनिज्म की नींव रखता है।
और उन्हें अभिजात्यवादी, एलिटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो तर्क और बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं आम अनुभव या व्यावहारिक ज्ञान के मुकाबले।
हाँ, ये आलोचनाएं अपनी जगह वाजिब हैं और ये दिखाती हैं कि प्लेटो के विचार कितने जटिल हैं और उन पर कितनी बहस हो सकती है। उनका जो लोकतंत्र के प्रति संदेह था, जो सुकरात की मौत से पैदा हुआ था, वो उन्हें एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले गया जो आज हमें काफी समस्याग्रस्त लग सकती है।
अच्छा, नैतिकता के बारे में उनका क्या कहना था? रिपब्लिक में न्याय पर तो बात हुई, लेकिन व्यक्तिगत नैतिकता, सदाचार?
उनका एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्चू इज नॉलेज।
सद्गुण ही ज्ञान है मतलब
ये कि अगर किसी को सच में पता है कि सही क्या है तो वो जानबूझकर गलत काम नहीं करेगा। बुराई या अनैतिकता जो है वो मूल रूप से अज्ञानता का नतीजा है। जिसे सच का, फॉर्म्स का ज्ञान हो गया है वो तो स्वाभाविक रूप से अच्छा और सदाचारी होगा ही।
प्लेटो ने और भी कई महत्वपूर्ण संवाद लिखे हैं ना, जैसे फेडो है जिसमें सुकरात अपनी मौत से ठीक पहले आत्मा की अमरता पर बात करते हैं।
हाँ, फेडो आत्मा की अमरता और शरीर से आत्मा के अलगाव पर है। फिर सिंपोजियम है जो प्रेम की प्रकृति पर है, उसमें वो प्रेम की सीढ़ी, लैडर ऑफ लव का विचार देते हैं, कैसे प्रेम शारीरिक आकर्षण से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर उठता है और अंत में सौंदर्य के परम फॉर्म तक पहुंचता है।
और अपोलॉजी भी है जिसमें सुकरात का अपने मुकदमे में दिया गया भाषण है।
हाँ, अपोलॉजी एक तरह से दार्शनिक जीवन जीने का बचाव है और इसी में वो सुकरात का मशहूर कथन है जो हमें प्लेटो के जरिए मिला, बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक नहीं है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये एक तरह से प्लेटो के पूरे दर्शन का सार है, लगातार सवाल पूछना, खुद की जांच करना, सत्य की खोज करना।
अच्छा, उनके अपने शिष्य अरस्तु ने भी तो उनके कुछ विचारों को चुनौती दी थी, खासकर वो फॉर्म्स वाला सिद्धांत।
हाँ, अरस्तु प्लेटो के सबसे मेधावी शिष्य थे, लेकिन उनका रास्ता काफी अलग था। अरस्तु ने अनुभवजन अवलोकन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा जोर दिया, मतलब इसी दुनिया की चीजों को ध्यान से देखो, उनका विश्लेषण करो और वहीं से ज्ञान मिलेगा।
तो उन्होंने फॉर्म्स के सिद्धांत को नहीं माना?
नहीं, उन्होंने उसे खारिज कर दिया, कहा कि यह अनावश्यक है, इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी चीज का सार या फॉर्म उस चीज के अंदर ही होता है, किसी अलग अनदेखे लोक में नहीं। ये पश्चिम के दर्शन में एक बड़ी बहस की शुरुआत थी, तर्कवाद जो प्लेटो का रास्ता था और अनुभववाद जो अरस्तु का रास्ता था।
फिर भी प्लेटो का असर तो जबरदस्त रहा है। वो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का कथन है ना कि सारा पश्चिमी दर्शन प्लेटो पर लिखी गई पाद टिप्पणियों की एक श्रृंखला है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है?
हाँ, थोड़ी अतिशोक्ति तो है, लेकिन ये प्लेटो के कद को, उनके प्रभाव को दिखाता है। देखिए, उन्होंने वो बुनियादी सवाल उठाए, यथार्थ क्या है, ज्ञान क्या है, न्याय क्या है, अच्छा जीवन क्या है, जिन पर आज तक दर्शन में बहस होती है। उनके विचारों ने न सिर्फ आगे के यूनानी दर्शन जैसे नियो प्लेटोनिज्म को प्रभावित किया, बल्कि सेंट ऑगस्टीन जैसे विचारकों के जरिए ईसाई धर्मशास्त्र पर भी बहुत गहरा असर डाला
और मध्य युग में भी उनका प्रभाव बना रहा। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी।
हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। मध्य युग में यूरोप में प्लेटो की ज्यादातर किताबें उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन इस्लामी दुनिया के दार्शनिकों जैसे इब्न रुश्द, एवरोइस और यहूदी विचारकों जैसे मेमोनाइट्स ने उनके विचारों को जिंदा रखा, उन पर अपनी टीकाएं लिखी, उन्हें पढ़ा पढ़ाया।
और फिर जब पुनर्जागरण काल में यूरोप ने प्लेटो को दोबारा खोजा तो इन्हीं अरबी और यहूदी स्रोतों से मदद मिली।
हाँ, काफी हद तक। तो तो प्लेटो सिर्फ पश्चिमी नहीं बल्कि एक तरह से वैश्विक बौद्धिक इतिहास का हिस्सा हैं।
बिल्कुल, और उनका वो गुफा का रूपक तो आज भी कितना प्रासंगिक लगता है, शिक्षा के लिए, आत्मज्ञान के लिए, या आजकल जैसे मीडिया और सूचना के दौर में ये सवाल उठाने के लिए कि कहीं हम भी तो परछाइयों को ही सच नहीं मान रहे।
हाँ, उनका एक और कथन याद आता है जो इसी से जुड़ता है। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की असली त्रासदी तब होती है जब वयस्क प्रकाश से डरते हैं। मतलब कैसे लोग सच जानने की मुश्किल से बचने के लिए अज्ञान के अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो प्लेटो ने हमें सिखाया कि सतह के नीचे देखो, सिर्फ इंद्रियों पर भरोसा मत करो, तर्क का इस्तेमाल करो और गहरे स्थायी सत्यों की तलाश करो। यही है।
हाँ बिल्कुल, और उन्होंने दर्शन को सिर्फ किताबों या विचारों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे समाज और राजनीति से जोड़ा। उनका यह मानना कि अच्छे और ज्ञानी लोगों को सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। जैसा उन्होंने रिपब्लिक में कहा था, अच्छे लोगों द्वारा सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता की कीमत दुष्ट लोगों द्वारा शासित होना है।
ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। चलिए, जाते जाते प्लेटो के बारे में एक और रोचक तथ्य बता देते हैं। कहते हैं उनकी मृत्यु 81 वर्ष की आयु में एक विवाह भोज में हुई थी, शांति से, नींद में ही।
हाँ, एक लंबा और बेहद प्रभावशाली जीवन जिसने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया।
तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्लेटो की वो गुफा आज के डिजिटल युग में, जहां हम सूचनाओं के बुलबुलों में, इको चेम्बर्स में घिरे हो सकते हैं, वो आज क्या मायने रखती है? क्या हम आज भी किसी अनदेखी गुफा के कैदी हैं जो स्क्रीन्स पर दिखती छायाओं को ही सच मान रहे हैं? और अगर हाँ, तो इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? सोचिएगा जरूर। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।